एवं इस प्रकार विलपंती विलाप करती बाला अबोध स्त्री या अबला विपिने निर्जन वन में अनुगता साथ गई हुई पतिम पति को पतिता गिरी हुई पादयो पैरों पर भर्तु पति के रुदती रोती हुई अश्रुणी आंसू अवर्तयात गिरा रही थी। अनुवाद। जिस प्रकार पति परायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है, ये तो तात्पर्य है कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा, जितना अनुवाद है उतना ही तात्पर्य है। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। प्लीज रिपीट। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उसे एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। जिस प्रकार पति परायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि प्रिये वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कितने भक्त लोग यहाँ ऐसे हैं जो ये चैप्टर में क्लासेस कई सारी पहले सुन चुके हैं यहाँ मंदिर में? ओके, तो भक्त लोग फैमिलियर हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। ये कौन स्त्री की बात हो रही है जो आज्ञाकारिणी पत्नी है? वैदर्भी, और दूसरा नाम पुरंजनी, और किसके लिए? एक एक टाइम में एक मलध्वज। तो ये अपने पति के शरीर पे करुण क्रंदन कर रही है और उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में केवल इतना ही बताया कि जिस प्रकार पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरते हैं तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बताया कि शोक संतप्त तो ये भी हो गई और शोक संतप्त शिष्य भी हो जाते हैं जब गुरु शरीर त्यागते हैं या चोला बदलते हैं या अपनी लीला समाप्त करते हैं, जैसे भी हम उसको कहें। गुरु तो नहीं मरते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इंग्लिश की हिंदी में ट्रांसलेशन करने की वजह से ऐसा आया है। श्रील प्रभुपाद ने तो नहीं लिखा ऐसा, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने डेथ लिखा होगा तो इसलिए मरता आ गया। दोनों में अंतर क्या है? एक पत्नी अपने पति के शरीर पे शोक संतप्त स्थिति में रो रही है, विलाप कर रही है, और शिष्य लोग अपने गुरु के शरीर छोड़ के जाने से वो भी शोक संतप्त हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं कर लो, मुझे पस समझ में नहीं आएगा कौन सा हाथ किसका है। कौन बताएगा इन दोनों में अंतर क्या है? कोई नहीं बताएगा? आगरे वाले प्रभु जी, मैंने आपको कहा बताने को? अच्छा ठीक है, बताइए। गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, फिर आध्यात्मिक रूप से शोक संतप्त हैं शिष्य लोग, और पति नहीं है परमेश्वर? यस। तो माता जी ऐसा बता रही कि जो पति पत्नी का रिश्ता वो शरीर से, वो भौतिक रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि पति की शरीर छोड़ के चले जाने से पत्नी को शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अंतर है। और अंतर यह है कि जो पत्नी और पति का जो रिलेशनशिप है वो भौतिक रिलेशनशिप है, और गुरु और शिष्य की जो रिलेशनशिप है वो आध्यात्मिक रिलेशनशिप है, आध्यात्मिक रिलेशनशिप। आध्यात्मिक रिलेशनशिप शरीर से इतना संबंध नहीं रखती, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने दोनों को बराबर से इक्वेट किया यहां। जब गुरु शरीर छोड़ के चले जाए तो शिष्य शोक संतप्त हैं, और इसका पति शरीर त्याग के चला गया तो ये भी शोक संतप्त है। तो शोक संतप्त तो दोनों ही हैं, लेकिन शोक और शोक में अंतर है। क्या अंतर है? जनरली स्पीकिंग, क्योंकि जो कोई भी हमारे भौतिक रिलेशनशिप है, भौतिक रिश्ते हैं एक दूसरे से, गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर होने के अलावा, जो कोई भी हमारे शारीरिक रूप से जो रिश्ते हैं, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये सब रिश्ते क्योंकि भौतिक हैं, शरीर पे आधारित हैं, इसलिए वो शोक, शोक संतप्त होना वो उसी प्रकार से भौतिक शोक है, क्योंकि रियल फैक्ट में उस पति से, वो पति की आत्मा मेरी आत्मा की पति नहीं थी, वो पति की आत्मा मेरी आत्मा की पति नहीं थी, लेकिन उस पति का शरीर मेरे शरीर का पति था। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? और जब हम गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप देखते हैं तो गुरु, हम किसी के शरीर को नहीं बनाते। वो बात दूसरी है कि जब तक वो आत्मा हमारे गुरु के शरीर में है, तब तक हम उस आत्मा के साथ में शरीर की भी पूजा करते हैं। और अगर जो वो शरीर त्याग के, जब भी वो शरीर त्याग के चली जाए, तो हम उस शरीर की पिक्चर बना के उसकी पूजा करते हैं या उसके साथ संग करते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद शरीर त्याग के एक दिन चले गए और उनका शरीर यहीं आपके पास में ही, पूरा शरीर उनका यहीं है। ये समाधि जिसके ऊपर वो ब्रास की मूर्ति के, बड़ी वाली मूर्ति के रूप में विराजमान है, डायरेक्टली उसके नीचे उनका सारा शरीर आज भी है। हम उस रूप में नहीं उनकी पूजा करते, इस रूप में करते हैं, या वो रूप जिसमें वो व्यास आसन पे बैठे हैं, उस रूप में आज भी उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो हमारा संबंध है, गुरु शिष्य संबंध, ये भौतिक संबंध से डिफरेंट है। अगर जो कोई शिष्य शोक संतप्त होता भी है तो भी उसको ये समझ होती है कि मेरे गुरु नहीं गए, केवल शरीर त्याग दिया, मेरे गुरु तो मेरे गुरु ही है, लेकिन अब केवल वो इस शरीर में नहीं। ये शरीर उन्होंने त्याग दिया। तो शिष्य शोक संतप्त तो है, लेकिन उसने कभी भी केवल अपने गुरु के शरीर को गुरु नहीं समझा था, उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा को भगवान का संदेश वाहक समझा था, और वो आत्मा अभी भी भगवान का की संदेश वाहक ही है। लेकिन शोक संतप्त क्यों होता है? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति शरीर में है तो उसका वो शरीर ढूंढना, उसके पास जाना, उससे बात करना, उसको भोजन पानी देना, कोई जवाब मिल जाना, वो सब सुगम है। और जब नहीं है तो हम पिक्चर बना के उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि इस संसार में जितने भी धर्म आज हैं, ज्यादातर सभी भगवान के निराकार रूप को मानते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है। तो साथ में और क्या कहते हैं? मूर्ति की पूजा करना पाप है, मूर्ति की पूजा पाप है। क्यों पाप है? कौन कह गया ऐसा? कोई अथॉरिटी ऐसा नहीं कह गई, जीसस क्राइस्ट ऐसा नहीं कह गए, मोहम्मद ने ऐसा नहीं कहा। ये मूर्ति पूजा पाप है, लोगों की बनाई मन की उपज है। जो लोग मूर्ति पूजा को पाप कहते हैं, क्रिश्चियंस ज्यादा करके, उनके किसी भी चर्च में जाओ तो किसी ना किसी रूप में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति उन्होंने विंडो में, डोर में, ऑल्टर में सामने किसी ना किसी रूप में रखी हुई है, बनाई हुई है। मंदिर के ऊपर भी, चर्च के ऊपर भी वो क्रॉस बनाया हुआ है। वो क्या है? वो एक सिंबल है जिससे हम जीसस क्राइस्ट को याद कर लेते हैं। उसमें और मूर्ति में क्या अंतर है? कुछ खास अंतर नहीं है। हम लोग ये मान के मूर्ति पूजा करते हैं कि हम मूर्ति पूजा, हम मूर्ति पुजारी या मूर्ति पूजक हैं। वास्तव में हम विग्रह के पुजारी हैं, मूर्ति के पुजारी नहीं हैं। उनके जो होती है वो मूर्ति होती है। विग्रह और मूर्ति में अंतर है, कोई बता सकता है विग्रह और मूर्ति में क्या अंतर है? विग्रह और मूर्ति में अंतर? हाँ, वो तो वो भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन अभी प्रश्न ये था विग्रह और मूर्ति में अंतर क्या है। हाँ, जो प्रतिष्ठित मूर्ति है वो विग्रह है। एक बार किसी भी हिंदू मंदिर में किसी भी मूर्ति को प्रतिष्ठा कर दी गई तो वो हमेशा के लिए विग्रह हो गए। यस, तो ऐसा नहीं है कि किसी मूर्ति में भगवान वास नहीं करते। भगवान तो कण कण में वास करते हैं और घट घट में वास करते हैं, तो मूर्ति में वास क्यों नहीं करते? मूर्ति में भी भगवान वास करते हैं, लेकिन फिर भी हम मूर्ति की पूजा यूजुअली नहीं करते। टाइम एट डिफरेंट टाइम्स हम मूर्ति की पूजा करते भी है, जैसे कि अभी कार्तिक मंथ था, वहां पे तुलसी जी के ऑल्टर पे आपने देखा कि भगवान यशोदा और दामोदर के रूप में वहां एक महीने के लिए विराजमान थे। आप लोगों ने खूब उनको दीपदान किया, सब कुछ किया। वो विग्रह कम और मूर्ति ज्यादा, उनको दीपदान करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हम ये सोच के दीपदान कर रहे कि ये माता यशोदा और ये भगवान का दामोदर रूप, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। केवल वो रिमाइंड कराने के लिए हमें। किसी भी क्रिश्चियन को पूछो तो उन्होंने भी अपने घर में अपने माँ बाप का फोटो लगा के रखा है, चाहे माला पहना के रखा है चाहे नहीं, जो शरीर छोड़ के जा चुके, उनका पिक्चर वहां टांग के रखा है। क्यों? वो पिक्चर को देख के उस पर्सन को याद करना सुगम हो जाता है, बस। वो पिक्चर में मेरी मां नहीं है, लेकिन उस पिक्चर को देख के मुझे अपनी मां को याद करना सुगम हो जाता है, इसलिए मैं उस पिक्चर को देख के अपनी मां की याद करता हूं, अपनी मां का मेमोरियल करता हूं, उसके लिए कीर्तन करता हूं, कुछ करता हूं, तो उसकी पिक्चर वहां रख लेता हूं। उसकी पिक्चर से उसकी प्रेजेंस वहां नहीं होती, लेकिन उनकी याद की प्रेजेंस मेरे हृदय में होती है वो पिक्चर देख के। मेरी मां उस पिक्चर में नहीं रहती, लेकिन मुझे ये सुविधा है कि मैं उस पिक्चर को देख के और आसानी से अपनी मां को याद कर लेता हूं। लेकिन मूर्ति और भगवान का जहां तक संबंध है, हर मूर्ति में भगवान वास करते हैं, और जो मूर्ति नहीं भी है उसमें भी भगवान वास करते हैं, क्योंकि वो तो कण कण में वास करते ही हैं। लेकिन विग्रह, तो जो मूर्ति है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है भगवान का, कि उस मूर्ति को देख के हमें वो भगवान की याद करनी। जैसे हम किसी हिंदू मंदिर में जाते हैं तो वहां ज्यादातर हिंदू मंदिरों में लाइन से ऑल्टर बने रहते, देवी का यहां है, शिव जी का यहां है, गणेश जी का यहां है। आजकल पिछले 200-300 साल से ये फैशन है कि हर कोई हिंदू मंदिर में राधा कृष्ण की भी स्थापना कर लेते हैं, चाहे उनको समझ में नहीं आता ये कौन है, उनको भी देवी देवताओं के लपेटे में लपेट देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये कौन है, इन दोनों का संबंध क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो राधा कृष्ण की भी स्थापना कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हम तो खुश हैं, लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती, कुछ ना कुछ राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये सब स्थापना करे रखते हैं। और वो मूर्तियां हमें एक एक